अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ आ रही ना ये आयतें कितनी जबरदस्त हैं। क्या चीज होगी जिसने उमर रजी अल्लाह ताला के दिल को पिघला दिया, उमर को उमरे फारूक बना दिया, उमर को रदी अल्लाह अन्हु बना दिया। बड़ी बात है ना इन आयात में। अल्लाह वो है, नहीं कोई इलाह मगर वो ही, इबादत के लायक कोई और है ही नहीं, वो ही है इबादत के लायक। और अल्लाह जो अल्लाह ताला का नाम है, जो बहुत ऐसा नाम है जो मैंने आपको बताया कि ये नाम आज तक किसी ने नहीं रखा, इतनी इबादत हुई अल्लाह के सिवा औरों की। शिर्क तो कब से चल रहा है, लेकिन किसी ने भी अल्लाह नाम नहीं रखा अपने खुदा का, जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे। और ये जो एक नाम है ना, इसमें अल्लाह ताला की तमाम सिफात इस एक नाम में जमा हो जाती है। अच्छा एक बात आपको बताना मैं भूल गई कि तीन सूरतें ऐसी हैं जिसमें इसमें आजम है, अल्लाह ताला का वो नाम जो जिसको आजम कहते हैं, यानी उससे जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और वो तीन सूरतें कौन सी हैं, एक अलबकरा, एक आले इमरान और एक सूरत ताहा। तो इस वजह से भी इसको, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़े मतलब है, इस सूरत की शान है। और दूसरे ये कि इस सूरत की एक फजीलत ये भी बयान की गई है कि इस सूरत को जो पढ़े, वैसे तो उसके बारे में कई और रिवायात जो सारी जयीफ है वो आई है कई, लेकिन एक रिवायत जो सही आई है कि ये वो सूरत है जो एताक है, यानी अतीक से ना आजाद करने वाली, तो ये आजाद करती है मुसीबतों परेशानियों से, मसाइल से, कुफर व शिर्क से, आखरत की सजा, आजाद करने वाली। अब आप सोच लेना कि जो भी इंसान के मसले मसाइल परेशानियां हैं ये उनसे आजाद कर देती। और ये पुराना खजाना है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया। बल्कि ये जो हम सूरतें पढ़ चुके हैं 17 से लेकर 21 तक, सूरह इसरा, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तहा और सूरह अंबिया, ये पांच सूरतें हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये आजाद करने वाली हैं। और ये पुराना खजाना, यानी ये बहुत शुरू में नाजिल हुई थी, और दूसरी ये आजाद करने वालियां भी हैं, यानी हम ये, अब आप सोच लेना किस चीज से आपको आजादी चाहिए, कुफर से चाहिए, जहन्नुम से आजादी चाहिए, मुसीबतों परेशानियों से आजादी चाहिए, उन सब के लिए। तो आप देखें ना कि इनके वाकई, फिर जब आप पढ़ते भी हैं इसके सब्जेक्ट पे गौर और फिक्र करें तो आपको कितनी अल्लाह ताला की पहचान होती है और उसकी अजमत आती है, और कैसा ईमान बढ़ता है ना इंसान का। ये समझ आती है कि वाकई अल्लाह ताला का नाम रहमान भी, अब देखें पिछली सूरत में भी और इसमें भी था, तो उसकी रहमत भी नजर आती है। लहुल अस्मा उल हुस्ना, उसी के लिए हुस्ना, हुस्ना हुसन से, हुसन का जो मुअन्नस है वो हुस्ना है, हसन का, तो हसन से मतलब है कि बेस्ट, एक्सीलेंट, खूबसूरत, तो उसके लिए सारे खूबसूरत नाम है। इसीलिए अल्लाह ताला को आप जब भी उसका नाम लें तो अल्लाह ताला कहें, जैसे कुरान में भी आया ये, यानी आला बुलंद, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत करें कहें, या अल्लाह ताला के और कोई नाम को अल्लाह रहमान रहीम कहें ऐसा, लेकिन प्लीज अल्लाह मियाँ ना कहा करें। मियाँ हम किसको कहते हैं, शौहर को, ठीक है, और मियाँ एक इंसानों के लिए नाम यूज होता है, या मियाँ जी कहा जाता था बुजुर्गों को, तो वो जो बेचारे भोले लोग थे पुराने, उनको तो उनको यही लगता था कि मियाँ एक बड़ा बुजुर्गी का वाला लफ्ज है, इज्जत वाला लफ्ज है, तो वो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ। तो कम अज कम हम जो कुरान के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ना ऐसे कहा करें, अल्लाह सुबहाना व तआला कहते, अल्लाह रब्बुल जल जलाली वल इकराम कहते, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते, अल्लाह तआला कहते, ठीक है, लेकिन ये ना कहें। तो अल्लाह ताला वो है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, अब इला का वर्ड भी अगर समझ ले बंदा तो बहुत समझ आ जाए कि ये कलिमा ही है ना, ला इलाहा इल्ला, अल्लाह पहले आ गया, अल्लाह पहले लाया गया नाम, फिर ला इलाहा इल्ला हुआ, ये तो हमारा कलिमा है, कोई इबादत के लायक ही नहीं मगर वो जो अल्लाह है। तो इलाह वो ही होता है जिसके इंसान की जिंदगी में सबसे टॉप पे जो, क्योंकि इबादत जो होती है ना, इबादत वो ऐसे नहीं कि मैं उसकी इबादत करती हूँ, इबादत करती हूँ और उसके बाद सारा वक्त अपनी मर्जियां करती हूँ, इबादत उस इबादत के अंदर ही इताअत भी है, इबादत के अंदर आजी है, इबादत के अंदर मोहब्बत है, इसके माने में ही इबादत के अंदर गुलामी है, ठीक है। तो ये कौन सी इबादत है जो हम करते हैं और सोचते हैं कि मैं इबादत कर रही हूँ और उसके बाद मनमानी अपनी कर रही हूँ, ये कौन सी इबादत होती है। लिहाजा इबादत को जब आप इलाह कहें ना कि वो ही इबादत के लायक है, तो समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरा नफ्स इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह है इबादत के लायक। और इसकी सिर्फ तस्बीहां करने की बात नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारा आखिरी कलिमा यही हो दुनिया से जाते वक्त कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये समझ भी होनी चाहिए कि मैं क्या क्या रही हूं, ठीक है। जिसका ये आखिरी कलमा हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो अस्माए हुस्ना, अब 99 कहते हैं ये उलमा ने जमा किए, लेकिन अल्लाह ताला के इसके अलावा भी कई नाम है जिनका हमें नहीं पता है, तो आप 99 याद कर लेते हैं तो उसके लिए भी बशारत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो जन्नत में दाखिल होगा। और इन नामों को सिर्फ रटना नहीं है, इन नामों के मुताबिक जिंदगी भी गुजारनी है, अल्लाह ताला को वाकई पर रहमान समझना है, उसको रहीम समझना है, उसको रजाक समझना है, उसको अल अलीम समझना है, उसको अल हफीज समझना है, तो ये सारे फिर नामों के मुताबिक जिंदगी भी गुजारे कि उन नामों को याद रखें जब जब वक्त आए, लेकिन अगर हमें नामों का फिर रट लिया और मतलब ही ना पता हो। इसलिए हमारी एक अस्माए हुस्ना के ऊपर सीरीज भी है, आप लोग जरूर सुनिए, उससे ईमान ताजा होता है। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आई आपके पास मूसा अलैहि सलाम की बात, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आई है कि नहीं आई, आप इसका जवाब दें, ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं आपको पता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसका जवाब दें नहीं मुझे नहीं पता या हाँ मुझे पता है, बल्कि ये क्या है क्यूरियोसिटी वो करने के लिए, पैदा करने के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए, आपको पता है, और फिर इंसान कहता है फौरन मुतवज्जे होता है कि कोई बात मुझे बताने लगा है। तो क्या आई है आपके पास एक बात मूसा अलैहि सलाम की। अब यानी हदीस का लफ्ज आया यहाँ पे, हदीस कोई नई बात को कहते हैं अक्सर, तो ये यानी अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मूसा अलैहि सलाम का जायरा थोड़ा पता तो था ही, लेकिन अगर पहले पता भी है तो अब एक नए तरीके से बात आपको बताई जाएगी, ठीक है। और दूसरी ये कि अगर आपको पता भी है तो अब एक और एंगल इसमें होगा जो आपने शायद पहले ना देखा हो, चाहे आपने कितनी दफा पहले उनकी बात सुनी हो, मगर हर दफा आप देखें कि मूसा अलैहि सलाम का किस्सा भी आता है तो डिफरेंट तरीके से आता है, और वैसे भी कुरान पाक की कोई भी बात हो आप देखें हर दफा डिफरेंट तरह से असर करती है ना। अब जिन्होंने पहले भी कोर्स लिए हैं उन्होंने शायद यही सूरत पहले पढ़ी है, लेकिन वो उस वक्त डिफरेंट तरह से असर करेगी, आज डिफरेंट तरह से असर करेगी, आपके जो हालात चल रहे थे उस तरह ही कुरान आपको एड्रेस करता है, ठीक है। तो इससे एक तरह से शौक पैदा किया गया, हलाता का हदीस मूसा, और यहां से फिर मूसा अलैहि सलाम का किस्सा शुरू हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहि सलाम के जरिए तसल्ली दी जाती है, और क्या सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है और सहाबा कोई, और हम क्या वैसे ऐसे ही पढ़ लें, नहीं हमारे लिए भी तसल्ली है जो जिन हालात से भी गुजर रहा है ना, अगर राहे हक पे चलने की वजह से आपको कहीं पे भी सताया जा रहा है या कहीं आपको मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हक बात पे हैं, आप सही पे हैं, लेकिन उसकी वजह से अभी हालांकि हम सोचते हैं हम तो सही हैं फिर तो मेरे पर कोई मुश्किल ही नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही है ना हमारा जहन, भाई मैं गलत करूं तो फिर तो ठीक है समझ आती है मुसीबतें आ रही हैं मुश्किल आ रही, मैं तो सही हूं क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? तो उस वक्त ये सोच लें कि मूसा अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी थी। वो भी तो सही थे, वो भी तो हक पे थे, लेकिन वो इस रास्ते में उनको क्या क्या मसाइब आए। और कभी भी इंसान फिर उस वक्त अकेला ना खुद को फील करे, मैं तो पता नहीं अकेली ये सब बर्दाश्त कर रही हूं और पता नहीं मेरे ऊपर ये मुश्किल आ रही है। नहीं, देखिए याद रखें, कुरान पाक कोई स्टोरी बुक नहीं है, मगर स्टोरीज के जरिए हमें समझाया जाता है, हमें कोई सबक दिया जाता है, हमें हमारे लिए कुछ उस स्टोरी के अंदर होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का आपको पता है कि जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा है, जिस पैगंबर का सबसे ज्यादा जिक्र है ना कुरान में, वो मूसा अलैहिस्सलाम। इनका किस्सा 37 सूरतों में आया है और 600 के करीब आयात में इनका जिक्र है, सुभान अल्लाह। और इनका नाम 130 मरतबा नाम लेके इनको जिक्र किया गया, मूसा। कितना प्यारा नाम है ना फिर मूसा। और आज तो एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से भी इनकी बात पढ़ेंगे, जो सबसे ही फेवरेट है मेरी तो। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़े मोड़ आए, और आपने बहुत सारी बातें सूरह बकरा में भी इनके बारे में पढ़ी हैं और भी सूरतों में। बहुत उतार चढ़ाव से इनकी जिंदगी गुजरी है, पैदाइश से लेकर और एंड तक के इनके वाकयात कुरान में डिफरेंट जगह पे आपको मिलेंगे बिखरे हुए। तो आप इनकी जिंदगी से, हर इनकी जिंदगी के फेज में आपको अपने लिए कोई रहनुमाई मिलेगी। तो अब यहाँ पे आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम का वो वक्त है, जबकि जैसे कि आपको सबको स्टोरी तो पता है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली सिर्फ वहां से ही लेती हूँ, कि जबकि मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के अंदर, जहाँ पे वो जॉब भी कर रहे थे, जहाँ पे उनकी शादी भी हुई, और शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो नबी थे जिनके घर पे ये रहे थे, 10 साल वहां पे रह के अब वहां से निकले हैं। 10 साल से निकल के और अपने फैमिली को लेकर जा रहे हैं। रात का वक्त है और सर्दी बहुत है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इज रोआ नारा, जब उसने देखा आग को, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम। इज का वर्ड जब आता है तो ये इंग्लिश वाला IS इज नहीं है, बल्कि ये इज है कि याद करो, जरा अपने जहन में लेकर आओ, जरा जस्ट पिक्चर करें इस चीज को, इमेजिन करें कि क्या हुआ जब उन्होंने आग को देखा। अब देखिए बीवी साथ है, और बाज रिवायात में आता है कि इनकी वाइफ जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो अब वो साथ हैं और उनको लेकर जा रही हैं, सर्दी है, अब वहां पे होटल वगैरह तो थे नहीं कि कहीं जाके रेस्ट हाउस में किसी में रात गुजार ले। अब वो आग जलाना जरूरी है सर्दी से भी बचने के लिए और रोशनी के लिए भी, अंधेरे गुप्त के अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने आग देखी, फकौल अली अहली, तो उसने कहा अपने घर वालों से, उमकुसू ठहरो, अहल से अपने अहल से मुराद बीवी भी हो सकती है, और उमकुसू जमा का सीगा है, तो क्या उनकी बीवी के अलावा भी कोई था? तो कहते हैं बाज रिवायात में लिखा हुआ है कि उनके साथ बीवी का पहले भी एक बच्चा था, तो वो बच्चा भी था। बाज में आता है कि नहीं, उमकुसू जो है ना उनके लिए सिर्फ जैसे एज अ रिस्पेक्ट आप किसी के लिए प्लूरल का वर्ड यूज करते हैं इस तरह से, कि जैसे आप ठहरिए यहाँ पे। इन्नी आनस तू नारन, मैंने मानूस हुआ हूं मैं एक आग से। ये क्यों नहीं कहा इन्नी मैंने देखा, इन्नी रोआ, इन्नी रोई, मैंने देखा, ये नहीं कहा। आनस तू, मैं मानूस हुआ, इसलिए कि शायद ये है कि आग एक दफा नजर आई उसके बाद नजर नहीं आई, तो इनको लगा कि वहां पे मैंने देखी है, जैसे एक दफा आता है ना जरा सी आग भाई और उस तरह। दूसरा बाज कहते हैं कि इनको नजर आ रही थी, दूसरों को नहीं नजर आ रही थी, बीवी को नहीं नजर आ रही थी। तो अब कह रहे मैं मानूस हुआ, असल में लोग अल्लाह ताला बुला रहा था ना वहां पे, तो वो एक दिखाई उनको एक झलक और फिर वो शायद खत्म हो गई। लाली, मैं इसलिए जाता हूँ, आप यहाँ पे ठहरे, जैसे आप कहीं देखा जब फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, किसी होटल के बाहर भी जाएं तो हस्बैंड निकल के जाते हैं, हम जाके कहते हैं मैं अभी देख के आता हूँ अंदर क्या है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बुलाता हूँ, सारी फैमिली तो नहीं चल पड़ती ना, तो आप लोग यहाँ पे बैठो मैं अभी देख के आता हूँ। लाली आती को मिनहा बेखबर से, शायद कि मैं ले आऊं तुम्हारे पास एक शोला, औ अजिदु आलन नारे हुदा, या मैं आग पर से कोई रहनुमाई ले आऊं, या शायद वहां पे कोई लोग हों जो हमें रास्ता ही बता दे, डायरेक्शन बता दे, नहीं तो कोई कंगारा ही उनसे पकड़ लाऊं ताकि आग था आपने। और दोनों ही चीजें मिल गई ना। देखें मैंने आपको बताया ना, कब्बस होता है यानी कि कोई एक हिस्सा, तो एक इल्म का एक हिस्सा भी मिल गया और हिदायत भी मिल गई वहां से, रहनुमाई भी मिल गई, सारी जिंदगी के लिए मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गई। अच्छा, अब अपनी फैमिली को वहां पे छोड़ के और जा रहे हैं। फलम अताहा, फिर जब वो आए, हा उसके पास, यानी आग के, यानी जिस जगह पे आग का उनको लगा था, वहां पे जब पहुंचे, नू दिया, आवाज दी गई, इसलिए कि आवाज का भी पता तो है नहीं ना कि कौन है, आगे थोड़ी पता है कि क्या कौन है, तो इसलिए मजहूल का सीगा आया कि एक आवाज दी गई, या मूसा, ए मूसा। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि अंधेरी रात है और उसके अंदर एक अजनबी जगह है जहां पे कोई नाम लेके पुकार रहा है कि ए मूसा, तो इंसान पे सोचता है कि हाँ, एक पता नहीं कौन है। तो वहां पे बाज रिवायात में आता है कि अजीबो गरीब एक हैरत अंगेज मंजर देखा, कि एक बड़ी आग है जो एक हरे भरे दरख्त के ऊपर शोले मार रही है, और उस दरख्त की कोई शाख भी या पत्ता भी कुछ भी नहीं जलता। आग ने दरख्त को घेरा भी हुआ है, दरख्त की रौनक भी है, ताजगी भी है, लेकिन आग भी है। देखिए कितना हैरत अंगेज मंजर है ना। और वहां से फिर आवाज आने लगी, इन्नी अना रब्बू का, बेशक मैं तेरा रब हूं। और इसमें देखिए कितनी ताकीदी है, बेशक मैं ही, जिसको आप कह सकते हैं बेशक मैं ही तेरा रब हूं। रब कौन होता है? पहले भी आपको कई दफा बताया, तो अब तो ये याद होना हो जाना चाहिए कि रब कौन होता है। रब वो जो पैदा करने वाला, जो पालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, हिफाजत करने वाला, रिस्क देने वाला, पालने पोसने वाला, परवरिश करने वाला, बड़ा करने वाला, बड़ी मोहब्बत के साथ, उसको रब कहते हैं। तो बताया गया, मैं ये नहीं कहा गया मैं इला हूं, रब हूं, यानी क्या मतलब कि जिसने तुम्हें संभाला, जिसने तुम्हें पैदा किया, जब से तुम बेबी थे उससे पहले से जो तुम्हें संभाल रहा है, परवरिश कर रहा है, तुम्हें पाल पोस के जिसने इतना बड़ा कर दिया, मैं वो हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से हिफाजत में रखा, मैं वो हूं जिसने तुम्हें इत्तला दी कि तु दुश्मन तुम्हें कत्ल करने आ रहा है, मैं वो हूं जिसने तुम्हें एक जगह पर ठिकाना दिया, मैं वो हूं जिसने तुम्हें जॉब दी, बीवी दी, घर बार दिया जब कुछ भी नहीं रह गया था तुम्हारे पास, मैं सारा कुछ तुम्हें देने वाला हूं, मैं वो हूं। तो रब के लफ्ज में ना बड़ी मोहब्बत होती है, क्योंकि जो पालना होता है ये एक्शन ही जो है मोहब्बत वाला है, माँ पालती है ना। तो पालना जुल्म के साथ तो पाला नहीं जा सकता, किसी को ये नहीं हम कह सकते वो फलाना है ना, वो उसको पाल रहा है, जबकि वो उसको जुल्म कर रहा है उसके ऊपर। पालने का लफ्ज ही जब हमारे जहन के अंदर आता है, जहन कहता है शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी, रहमत। तो जिसने आज तक तुम्हें संभाला है, मैं वो हूं। देखिए इस ये जो सारा हम अभी तक पढ़ चुके हैं ना, और ये भी और आगे भी आ रहा है, इन्नानी अनल्लाहु ला इला, ये सब अल्लाह ताला का तारुफ है। और जरूरी है कि हम ये इल्म हासिल करें और इसको दोहराते रहें। ठीक है, अना रब्बुका फखला नालाइक, तो अपनी जूतियां उतार दीजिए, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, कि बेशक आप मुकद्दस वादी में है तुआ की। एक तो सबसे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम को मुतमईन कर दिया कि आप मतलब इंसान सोच के ही सोचे डर जाता है कि ये कौन कह रहा है मेरा नाम लेके, किसी को मेरे नाम का भी पता है, और पता नहीं अंधेरे गुफे में कहाँ से कोई आवाज एकदम आ रही है और ये आग सी लगी हुई और ये और मेरा नाम लिया जा रहा है, तो उनको मुतमईन कर दिया, काम डाउन कर दिया कि मैं रब हूं तुम्हारा जो तुमसे बात कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वो खुश नसीब इंसान है जिनको अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ, ये ऑनर हासिल हुआ कि जमीन पे रहते हुए इस जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने किसी से डायरेक्टली कलाम नहीं किया सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम के, इसीलिए उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है और इसीलिए इसको ये सूरत का नाम भी बाज ने ये दिया। तो वो कितनी बड़ी बात थी अल्लाह ताला किसी से कलाम करे डायरेक्टली बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी फरिश्ते के। तो मैं तुम्हारा रब, ताकि उनको पता चल जाए कि जो मेरे से बात करने वाला है वो कोई और नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। और ये भी कि आगे जब बात की जाएगी तो देखें, जब मैं जैसे आपको बताया कि बहुत जरूरी होता है कि इंसान अगर किसी बात को तवज्जो देना चाहता है तो वो वही बात होती है जिसको बोलने वाले को वो ट्रस्ट करता है या जिसकी क्रेडिबिलिटी उसके यहाँ होती है। ऐसे ही आता जाता कोई भी बात कर दे तो इंसान उसको तवज्जो से सुनता भी नहीं, लेकिन जब कोई बड़ा बात करता है तो उसको तवज्जो से सुनता है। जब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया ना कि मैं तुम्हारा रब हूं, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं, अब तो तवज्जो ही तवज्जो है। इसीलिए जिस टीचर से भी आप इल्म हासिल करें, जिससे भी आप पढ़ें, जरूरी है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो कि ये जो हमें बात बताएगा ये कोई सही बात बताएगा। इसलिए कि अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, उसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, तो फिर बात को आप फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कही गई कि अपने जूते उतारने। ये क्या चीज है, ये तो कोई इल्म तो नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं किया जा रहा, जूते उतार दे ये क्या है, ये अदब है, अदब। तो यहां से पता चला कि इल्म देने से भी पहले अल्लाह ताला ने अदब सिखाया। बाज रिफायात में लिखा है, बाज तफसीरों में, कि मूसा अलैहि सलाम की जो जूती थी वो मुर्दा उससे की खाल की थी तो इसलिए कहा गया, जो भी वो, लेकिन सबसे पहले मैनर्स। इब्ने मसूद फरमाते हैं ना कि हम ईमान सीखते थे फिर कुरान सीखते थे, फिर कुरान सीखते सीखते हमारा ईमान बढ़ जाता था। तो ये अदब है जो पहले सीखने की जरूरत है। आज अदब खत्म हो चुका है, हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी सिखाएं और हमने जाना है, भाई कितनी देर में आप सिखा देंगे पूरा कुरान, कितनी देर में सीख दें। अच्छा 3 साल 4 साल वो तो बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, जल्दी जल्दी सिखाएं, बस 1 साल के अंदर सिखा के हम जाएं। अदब के बगैर इल्म फायदा नहीं देता। हमें अभी मेरे किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई कोर्स बताएं आपके पास जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, सबसे शॉर्टेस्ट जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे। बिल्कुल अच्छा, मैंने कहा ये फलां फलां हमारे पास कोर्स है। फिर उसके बाद वो सोचती रही और उन्होंने कहा कि अच्छा फिर मैं सोच के बताऊंगी। नहीं, अभी भी तसल्ली नहीं थी, पूरे हफ्ते में अगर 1.5 घंटा भी निकालना है तो वो भी मुश्किल था, अभी भी तसल्ली नहीं थी। बहुत मुझे तकलीफ हुई क्योंकि वो फारिगुल बाल थी, सारे बच्चे बच्चे शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए और तंदुरुस्त भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, चलती फिरती भागती दौड़ती नहीं। और यही सोच रही थी कि या अल्लाह अगर हमें इतना दुख हो जाता है इस तरह से देख के कि अल्लाह क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं इनको समझ आती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना दुख होता होगा। और दूसरे ये कि हमें हमें फरागत का टाइम भी मिल जाए ना, यानी रिटायरमेंट वाली जिंदगी भी मिल जाए जिसमें आप कोई काम नहीं, ना तो कोई छोटे बच्चे संभालने हैं, ना बच्चों के बच्चे संभालने हैं, ना कोई कुछ भी नहीं काम है, सारा दिन पता नहीं क्या करते होंगे अल्लाह जाने, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारे पास कुरान के लिए वक्त नहीं। और ज्यादा बात उन्होंने क्या पूछी कि बस ये बता दें कि बचपन में हमने किसी वो आपा जी से पढ़ा हुआ था एक कुरान, तो आप किस तरह से है, कुछ उसको सही करने का कोई तरीका हो जाए, बस इतना। क्योंकि कुरान इनके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए सिर्फ यही है कि हम इसको अरबी में सही पढ़ना सीख लें। बस बाज लोगों को सिर्फ यही शौक होता है, उनके लिए कुरान हिदायत की किताब थोड़ा ही है, इसे रहनुमाई थोड़ी लेनी है कि इसको समझें कि क्या कह रहा है। वो तो फिर लितशका हो जाएगा, ताकि हमारी जिंदगी मुसीबत में पड़ जाए, इसके लिए होगा। मुसीबत में तुम पढ़ना नहीं चाहते। तो ये इल्म के भी आदाब होते हैं, इल्म के लिए भी सब्र चाहिए। सूरह कहफ में हम इल्म के आदाब भी देख चुके हैं, सब्र भी चाहिए इसके, हौसला भी चाहिए इसके लिए, मुसलसल चलते रहना चाहिए। पहले दिन ही कोई लोग पूछ रहे, आप इसका बता दें, उसका बता दें। अभी आप दूसरे तीसरे चौथे पारे पे पहुंचते हैं, आपको वहां वहां तक की सारी बातें आप चाहते हैं हमें समझ आ जाए, पता चल जाए, ये नहीं हो सकता। तो इल्म के आदाब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म नाफे की दुआ की, अल्लाह मनी असल का इल्म नाफे अन, अल्लाह मुझे इल्म नाफे दे। इल्म नाफे कैसे बनता है जब आपके पास अदब भी हो? हम अदब करना नहीं जानते, ना इल्म का अदब है, ना इल्म वालों का कोई अदब है। बस आप कहते हैं, मगर देखें सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, कभी मुझे इतना अफसोस होता है ना, पास लोगों से पूछे आप क्यों ये कुरान सीखना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, तो वो बस कहते हैं वो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमसे सवाल करते हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए ना। मेरे ख्याल आप जो सुनने वाले हैं इनमें से भी काफी लोगों ने ये जवाब दिया होगा। क्या आपको बच्चों के सामने सिर्फ लाजवाब हो जाना ये गरां गुजरता है, इसके लिए आप ये इल्म लेने आए? क्योंकि आपको लगता है उनके सामने हम स्पीचलेस हो जाते हैं, वो तो मैं ऐसे सवाल करते हैं, फिर हम क्या करें? नहीं, ठीक है, आप बच्चों को भी जवाब दे सकते हैं इस इल्म को हासिल करके सारा कुछ, लेकिन ये मकसद है आपका कि हम स्पीचलेस क्यों हो जाते हैं उनके आगे, हमें क्यों नहीं समझ आती हमने क्या कहना है? तो लिहाजा अब हम सीख लेंगे ना, तो फिर हम उनके सामने हमारी बेइज्जती तो नहीं ना होगी। इस बेइज्जती से बचने के लिए हम जरा कुरान को जरा पढ़ के तो देख ले, तो बच्चे ही फिर आगे से धंधा कर देते हैं ना कि आपको नहीं पता इसका क्या जवाब है, इसका आपको नहीं पता, तो फिर शर्म आती है। तो उससे बचने के लिए वो कुरान पढ़ते, अल्लाह अकबर। यानी कभी जिंदगी में ये नहीं ख्याल आया कि मुझे हिदायत चाहिए, अल्लाह तू मुझे राह दिखा, अल्लाह तू मुझे बता कैसे चलना है, मैं तो नहीं जानती, मेरी अक्ल समझ क्या है? उसके लिए कभी नहीं ख्याल आया कि उसके लिए मैं कुरान सीखूं पढ़ूं। फिर जिस मकसद के लिए आप आए हैं बस वही मकसद पूरा होगा ना। और आपने बच्चों को जवाब देने हैं तो फिर आ जाएगा जवाब देना भी, लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी अपनी जिंदगी के लिए। इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हाँ, जब वो पूछेंगे कि मक्की सूरत का क्या मतलब होता है, ये मक्की है कि मदनी है, ये क्या है, कितने साल में कुरान उतरा, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, वो प्रॉफिट कौन थे, उनके जवाब आ जाएंगे आपको, करना करें, लेकिन हिदायत नहीं आएगी। फिर जिसका मकसद ही हिदायत लेना नहीं, तो हिदायत कैसे आएगी? दुख होता है, एक नहीं बेशुमार लोगों से मैंने ये सुना। और क्या करें, बच्चे बच्चे पूछते हैं ना, बच्चे पूछते हैं, बच्चों के सवालों के जवाब हमने देने, यानी बच्चे हो गए इतने बड़े हो गए, वो सवाल पूछने शुरू हो गए, शुक्र है कि उन्होंने सवाल पूछ लिए, तो तब भी कुछ सोच आ गई कि चलो हम सीख लेते हैं, शायद वो सवाल ना पूछते तो शायद वो भी ना आता जहन में ही, ना आता कभी कि ये कुरान कभी हमने सीखना। तो अपने लिए हिदायत के लिए बहुत ही कम लोग हैं जो ये कहें कि अपने घुटने टेक दें, अपने बेबसी शो करें कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, वो हिदायत जिसको मैं दिन रात अपनी नमाजों में मांगती हूँ, अल्लाह तू मुझे दे दे इस कुरान के जरिए, अल्लाह तू मुझे दे दे, मुझे सिखा दे, मुझे बता दे। बहुत कम लोग ये जवाब देते हैं, मैंने तो नहीं कभी सुना आज तक कि कोई ये जवाब दे रहा हूं। लेकिन चलें, अगर आप इस नीयत से आए थे पहले कि बच्चों को जवाब देना, तो अब कम से कम अपनी नीयत बदलें। बच्चों को तो आप दे ही लेंगे जवाब इंशाल्लाह जब पढ़ लेंगे, लेकिन नीयत अब ये कर लें कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे दे, मेरे पास हिदायत नहीं, मैं अंधी हूँ इस दुनिया में, मेरे पास आंखें नहीं है, मुझे पता नहीं है कौन सा रास्ता, ए अल्लाह तू मुझे सिखा दे, तू मुझे बता दे, तू मुझे उंगली पकड़ के चला दे इस रास्ते पे, और मेरी उंगली ना छोड़ना है अल्लाह, जब तक मैं जन्नत तक ना पहुंच जाऊं, अल्लाह तू मेरा सहारा बन जाए, तू तूने राह भी दिखानी है, तूने चलाना भी है, और तूने ही इस पे जमा के रखना भी है, और तूने ही मंजिल तक पहुंचाना भी है। ये सब कुछ हिदायत में, मेरी मंजिल जन्नत है, तू मुझे वहां तक पहुंचा देना, उससे पहले ना मुझे छोड़ना। तो प्यारी बहनों, आज से ये नियत कर लो, तब देखना कुरान के लिए कैसे सीना खुलेगा, तब देखना कुरान कितना प्यारा लगेगा, तब कुरान बोझ नहीं लगेगा। तो अदब सिखा दिया अल्लाह ताला ने अपने नबी को, तो सहाबा कराम को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब सिखाया करते थे। और आप देखिए, जिब्राइल अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे ना, हदीसे जिब्राइल में, एक कैसे आके घुटने से घुटने मिला लिए थे, और फिर किस तरह से आपको सिखाया था। तो इल्म के लिए तवज्जो से सुनना, तवज्जो करना, और फिर इल्म के लिए एक अदब से बैठना, फिर सवाल करने का सलीका आना, इल्म की मजलिस में आपने कैसे हाजिर होना है, वो होना, ये सब जरूरी है, ये सब इल्म के आदाब। तो ये अदब नहीं होता कि बस जल्दी जल्दी सिखा दे, हमें तो बहुत जल्दी है, और नहीं सिखाएंगे तो फिर ठीक है, फिर इतना लंबा हमसे नहीं टाइम निकाला जाता। तो अल्लाह ताला नबुवत देने वाला है अपने नबी को, लेकिन उससे पहले अदब सिखा रहा है। और ये वादी मुकद्दस है, क्यों जूते उतारे, इसलिए कि ये पाक वादी है, मुकद्दस वादी है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ये भी बात है कि पता चलता है कि जो मुकद्दस जगह होती हैं उनका एक अदब है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, तो वहां पे उस रिस्पेक्ट को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और गो कि आप जूतों के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह कि अगर आपको ये लगता है कि जूतों पे कोई गंदगी ना लगी हो, तो इस वजह से फिर आप जूते उतार दें, वरना वैसे हमें इजाजत है। मगर देखिए, उस जमाने में मस्जिदें कच्ची होती थी, आज अगर जूते पहन के आप कारपेट पे चलना शुरू जाएंगे तो गंदगी तो सारी वहीं पे साफ करके आएंगे उस कारपेट पे। तो इसलिए जरूरी है कि हम फिर ऐसी जगहों पे जो ऐसी मुकद्दस है, फिर वहां पे जूते उतार देना। आप देखेंगे कि यहूदी खास तौर पे वो जूते उतार के अपनी नमाज पढ़ते हैं। आपसे सलम ने फरमाया कि उनकी मुखालफत करो, इसलिए हमें इजाजत दे दी कि हम जूते के साथ भी कर सकते हैं, अगर हमारे जूते पाक हैं तो। ठीक है। और फिर दूसरा ये बात है कि आज साइंस भी बताती है कि जब आपका कनेक्शन जो है ना जमीन के साथ हो जाता है, लेकिन जूते है ना तो बीच में एक बैरियर है, लेकिन जब आपकी अपनी स्किन आपकी जमीन के साथ लगती है तो उसके भी असरात होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी घास के ऊपर चलने से, वो कहते हैं ये फायदा है, ये फायदा है, आप नंगे पैर घास पे चला करें सुबह को, तो क्यों कहते हैं वो। इस तरह ही देखिए, जिस पाक जमीन मुबारक जगह पे वो थे, तुआ जो है उस वादी का नाम है, और तूर के दामन में ये वादी है, वो पूरा इलाका सेना कहलाता है, जैसे कहते हैं ना सहराए सीना जिसको कहते हैं, तो वो उस जगह पे ये वादी थी तुआ की। तो अब इसमें ये इतनी मुबारक जगह है, तो आप अपने जूते उतारेंगे तो जमीन से कनेक्शन जो होगा, इसकी बरकात यानी आपको मिलेंगी इस जमीन की। तो कई जगहों की बरकतें हासिल करने के लिए बंदा जूते उतार के जाता है तो मिलती हैं बरकतें फिर। और कहते हैं आज तो साइंस ने चूंकि ये सारी चीजें भी प्रूव कर दी हैं, आपको पता ही होगा इसकी हिकमतें। कहते हैं कि जापान में बच्चों को ना क्लास में जूते उतरवा के उनको पढ़ाया जाता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.